बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एक और नसीब ज़िंदगी लेकर आप सब की खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत हम लोग ख़ुद यहाँ पे एकदम ताज़गी के साथ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मुकम्मल ताज़गी के साथ ये हफ़्ता शुरू करेंगे।
ऐसा ही बिल्कुल सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी
वालेकुम
खिदमत में,
सलाम
अपने
बोल रहा हूँ।
प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। और जी बिल्कुल, आज फिर हम तकरीबन 7:30 बजे, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी
हाँ, ये थोड़ा यानी वो जो
पीछे आ
आपने
गए हैं,
बताया था ना, वो
बिल्कुल ऊपर
नसीम
नीचे होते
ज़िंदगी बच के
बेच गए,
फला, वो हम
लेकिन ये
लोग 4 मिनट
बचके नहीं
पहले
है,
ही हैं।
ये नसीम ज़िंदगी बच के थोड़ा पहले है।
हाँ
तो वो जी,
बिल्कुल।
बहरहाल थोड़ा सा हमने आज जल्दी प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में शुरू कर दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज भी प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स शामिल किए हैं, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएंगे। हफ्ते का मौजू बताता चलूँ, बड़ा अहम हमने रखा। क्या जी रखा है हमने हफ्ते का मौजू?
आज़ादी इजहार के
जी
बारे में, उसकी एक वजह है, वजह आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे साथ में अपने प्रोग्राम को, अपने जहनों को और इंशाल्लाह अपने पूरी ज़िंदगी को मुतवर्रिक बनाएंगे कलाम मासूम से।
हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तीन चीज़ें इंसान को रज़ाए इलाही तक पहुंचा देती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार, नरम रवैया और बहुत ज़्यादा सदका।
कोशिश करें कि आज ही से इन तीन नुकात पर अगर अमल करें तो आप देखेंगे कि कितना असर पड़ेगा हम लोगों के अतराफ़ वालों पर, और जब वो लोग देखेंगे कि इतना मुसबत हम इतनी मुसबत तब्दीली हम लोगों में आ गई है, तो यकीनन वो लोग भी फिर यानी वाकई दूसरी निगाह से हम लोगों को देखना शुरू कर देंगे। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके एक शख्स, एक घराना, फिर एक मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है।
इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हसन। और यहाँ पर क्या बताएं नाज़रीन
हाँ,
को,
एक तो
अपने
हम
मेहमानों
बताएं
के
अपने
बारे में बताएं।
मेहमानों के बारे में
चलें ठीक
बताएं।
है, हमारे साथ जो हैं इस्लामाबाद से हमें लैला बतूल साहिबा ज्वाइन करेंगी, वकील हैं और सामाजिक कारकुन भी हैं, और इंशाल्लाह वो हमें बताएंगी आज़ादी बयान क्या होता है और
बिल्कुल,
उसकी इकसाम।
और उसके अक्साम के बारे में
बिल्कुल
बताएंगे।
ठीक है।
आज़ादी इजहार हम लोगों ने इसलिए मौजू उसका इंतखाब किया है क्योंकि आज ईरान में कौमी दिन है सहाफ़ियों का।
बिल्कुल जी हाँ,
आज
इसका
से तकरीबन 20 साल पहले जब तालिबान ने हुकूमत पे कब्ज़ा किया था अफगानिस्तान के, तो ईरान के एक रिपोर्टर को भी शहीद कर दिया था, जो ईरान के मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स थे उनके साथ साथ ईरान के एक रिपोर्टर को भी शहीद कर दिया था। लिहाजा आज का दिन जो है वो हर साल सहाफ़ियों के दिन के हवाले से ईरान भर में मनाया जाता है और मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है इनके काम की अहमियत के हवाले से, और जो इनके फ़राइज़ हैं कि वो इंशाल्लाह पूरी तरह से उसको अदा कर सकें, तो उसके हवाले से गुफ्तगू की जाती है। इसमें बहरहाल खसूसी प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन ऐसा काम है शायद रिपोर्टरों का कि मिसाल के तौर पर अस्पतालों का काम भी हालांकि बहुत मुश्किल काम है और हमेशा 24 घंटे जारी रहता है और जारी रहना चाहिए, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे मौक़े हो जाते हैं कि अगर अस्पताल बंद हो गया तो फिर कोई काम नहीं होता है आम तौर से, लेकिन रिपोर्टरों का काम जब वो अस्पताल बंद होता है तो तब शुरू होता है कि वो खबरें बनाना और सही तौर से पेश करना और हकायक से आगाह करना। तो इस हवाले से इंशाल्लाह लैला बतूल साहिबा से गुफ्तगू करेंगे, और हम लोगों के दीगर मेहमान हैं डॉक्टर दीप अंजान घोष, और वो गुफ्तगू करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी और ये जो आँख में लेंस का
जी
इस्तेमाल होता है
बिल्कुल
वो, उसके हवाले से गुफ्तगू
बिल्कुल ऐसा
करेंगे।
ही है, ऐसा ही उनका मौजू चलेगा कि लेंस टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है। तो उम्मीद करेंगे आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि आप हम लोग यहाँ पर वाइबर व्हाट्सएप के नंबर आप लोग अभी स्क्रीन पर देख लेंगे, और उसके अलावा नसीम-ए-ज़िंदगी@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है, उसी पे ही आप हमें चाहे हैंगआउट पे भी पैगाम भेज सकते हैं, गूगल प्लस पे भी हम इसी एड्रेस के साथ मौजूद हैं, facebook.com/SUTMorningShow, और उसका मैसेंजर भी यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन है। तो आप बहरहाल हमारे साथ हमारे से कोई सवाल पूछना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहें कर सकते हैं। प्रोग्राम में आप अगर फ़ोन के ज़रिए शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना नंबर हमें भेजिए, हम आपको कॉल करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया
शुक्रिया।
खुर्रम, और अगर आप लोग कोई इस कुछ इजहार राय करना चाहें, ये रिपोर्टर्स की जो जो सहाफ़ी होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी या उनके बहरहाल उनकी अच्छी कारकर्दगी रहती है, बुरी कारकर्दगी रहती है, क्या वाकई इजहार यानी आज़ादी का इसकी जो होती है आज़ादी इजहार माफ़ कीजिएगा जो होती है ये वाकई हकीकी चीज़ है नहीं है, किस मुल्क में कितनी है, आपके इलाके में कितनी है, इसके बारे में कुछ भी आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को, आप लोग शेयर कर सकते हैं वो तमाम अपने अकीदे, मुकम्मल आपको आज़ादी हासिल है। चलते हैं हम लोग प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ जहाँ पे आप लोग करेंगे वर्जिश और फिर उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वर्जिश ही करेंगे
जी, बिल्कुल वर्जिश है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज भी हम वर्जिश का एक नया स्टेप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो बातें मैं बताऊंगा उन पर पूरी तरह तवज्जो दीजिए। अगर आपकी कमर में तकलीफ है या वज़न ज़्यादा है तो बहुत ही एहतियात से ये वर्जिश अंजाम दें। तो तैयार हो जाएं, हम धीरे धीरे नीचे जाने के स्टेप से ये वर्जिश शुरू करेंगे। घुटने थोड़े से मुड़े हुए हों, नाक से सांस लें और सांस छोड़ते हुए ठुड्डी गर्दन से लगाएं और 5 गिनते हुए नीचे जाएं। 4, 3, 2, 1, ज़मीन पर हाथ पहुंच जाएगा। उसके बाद हाथ से
जी आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग आ गए अंधेरे में से अचानक रोशनी में आ गए हम लोग और इंशाल्लाह कि हम लोग हमेशा ज़ुलमात से नूर की तरफ आएँ और सभी इसी तरह हों और इंशाल्लाह तौफीक मिलेगी सही तौर से हम लोग दूसरों के हुकूक का ख्याल रख सकें।
जी हसन, यहाँ पर हमारे पास बहुत से पैगाम आए हैं। एक तो शफकत अहमद साहब हैं कश्मीर से, यासीन साहब हमारे साथ हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो है कुछ तस्वीर भी भेजी हैं। सैयद हसन साहब ने हमें तस्वीर भेजी हैं, काजिम रज़ा साहब ने एक वीडियो बहुत अच्छी भेजी है, मोहम्मद हसन साहब ने, और जावेद हुसैन भट्ट साहब, अनीसा फातमा साहिबा, और भी बहुत से हमारे नाज़रीन जो हमारे साथ भी ग्रुप पे ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सबका और इंशाल्लाह कि हमेशा इस तरह से हम लोगों का साथ देते रहिएगा और हम लोगों को उस वक्त ज़्यादा खुशी होगी जब आप अपनी ली हुई तस्वीरें हम लोगों के लिए भेजेंगे। हर एक के महल्ले में, हर एक के शहर में कोई ना कोई छोटे से छोटा वाकया पेश आता ही रहता है। आपके महल्ले में कोई अच्छी सी खबर होगी उसकी तस्वीर भेज दें। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के दोस्तों ने जो दिल्ली में कुरान की नुमाइश हो रही है उसकी तस्वीर भेजी, माफ़ कीजिएगा, एक या दो दिन पहले हम लोगों के लिए भेजी थी और हम लोग इंशाल्लाह वो दिखाने की कोशिश करेंगे और मज़ीद तफसीलात के साथ। अभी हम लोग चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहाँ पर लैला बतूल साहिबा मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं और इसके अलावा वकील भी हैं और बताएंगी आज़ादी इजहार के बारे में। जी लैला बतूल साहिबा,
आज़ादी इजहार प्यां के हवाले से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक ये आज़ादी इजहार प्यां या आज़ादी इजहार राय जो है ये इंसानी हकूक में से एक बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक की हैसियत रखता है। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या ये और ये इंसानी हकूक से किस तरह ये फंडामेंटल राइट जो है ना ये इसकी हैसियत रखता है। हर बंदे का ये बुनियादी हक है कि वो इस आर्टिकल के मुताबिक मैं बता रही हूँ कि हर बंदे का बुनियादी हक है कि वो जो है अपना राय, अपना ओपिनियन, अपने ख्यालात का इजहार जो है वो आज़ादी के साथ कर सके और बगैर किसी स्टेट की मुदाखलत के बगैर, और कोई भी अगर कोई जो है बातचीत चल रही है उसमें जो है ना अपना इजहार ख्याल कर सके। इसलिए हर बंदे का यह हक बुनियादी तौर पर इसको हक हासिल है कि वो जो है अपनी राय का इजहार जो है वो बरमला कर सके आज़ादी के साथ, और स्टेट को उसमें इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेट उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, यानी मुदाखलत नहीं कर सकती। अब ये जो आज़ादी इजहार बयान है या आज़ादी इजहार राय है, इस पर हुकूमत ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन इस हिसाब से लगाई गई हैं कि वो भी जो है कौम की, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए वो ये रिस्ट्रिक्शन या पाबंदियाँ ये लगाई गई हैं कि हर बंदा जो है वो बात कर सकता है, राय दे सकता है अपने किसी भी ओपिनियन पे, किसी भी मजहबी ओपिनियन पे, किसी भी बारे में मुल्की राय भी दे सकता है, मुल्क के हालात के बारे में भी ओपिनियन दे सकता है। लेकिन इस बात से मना किया गया है कि अगर बंदा इजहार करने से या ऐसी राय देने से मना किया है जो दूसरे बंदे की शोहरत पर बदनामी जो है ना उसका धब्बा लगाए, यानी उसकी शोहरत को बदनाम करे, उसकी रिप्यूटेशन ख़राब करे, जो बंदा मोहल्ले में उसके घर में उसकी रिप्यूट ख़राब हो जाए, उसके बारे में इस तरह का ओपिनियन दे और बग़ैर किसी एविडेंस के, यानी बग़ैर किसी सबूत के। तो हमारा कानून ये कहता है कि इसके मुताबिक जो बंदा अगर किसी बंदे की जानबूझकर उसके बारे में बयान देता है या राय कायम करता है और उसकी इज्जत पे जो है ना धब्बा डालता है, बदनामी उसको देता है, और जहाँ वो प्रोफेशनल मतलब जहाँ पे वो जिस शोबे में वो काम कर रहा है, यानी जिस शोबे में वो काम कर रहा है और जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर उसकी इज्जत ख़राब करता है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी आईन इस बात की इजाज़त नहीं देता। उसमें ये होता है कि उसके बारे में थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि अगर बंदा कोई किसी बंदे की इज्जत को ख़राब करता है या उसकी बदनामी करता है तो उसका ये सिंपल सा तरीका है कि अदालत में एक जो है वो दरख्वास्त दी जाती है या दावा किया जाता है जिसे डेफमेशन का दावा कहते हैं, यानी हत्या की इज्जत का दावा किया जाता है। इसमें यह जो है ना दूसरा बंदा जो जिस बंदे की इज्जत को ख़राब करता है या बग़ैर किसी सबूत के उस पर इल्ज़ाम लगाता है तो उसको जो है ना हर्जाना उसका देना पड़ता है, यानी कंपनसेट करना पड़ता है उस बंदे को। दूसरी बात यह कि हमें राय और आज़ादी के साथ राय देने का, बयान करने का, आज़ादी के साथ अपनी राय देने का जो है वो हक हासिल है, लेकिन ऐसी राय ऐसा बयान देने से मना किया गया है जो मुल्क की सालमियत या मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल दे। ऐसी भी राय देने से जो है मना किया गया है या ऐसा बयान देने से मना किया गया है जो कि मुख्तलिफ मजहबी फ़िरकों में इंतशार पैदा करे, मुख्तलिफ मजहबी फ़िरकों में जो है वो नफ़रत अंगेज़ी पैदा करे, उनके जज्बात को भड़काने की कोशिश करे, और ये जो है ये जुर्म के ज़ुमरे में आता है। और ये ऐसे बंदे जो कि किसी के जज्बात को ख़राब करते हैं, उनके मज़हब के बारे में नफ़रत अंगेज़ बातें फैलाते हैं और उन लोगों के अंदर जो है वो जो है उनके जज्बात को उभारते हैं, तो ये वो बंदे जो है वो सज़ा के मुर्तकिब होते हैं। ऐसी राय और ऐसा बयान देने से भी जो है उससे मना किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि जो जो है किसी जो कोई मौजर सेहत कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई मौजर सेहत चीज़ है उसके बारे में बयान दे कि नहीं जी ये लोगों की सेहत के लिए बेहतर है, तो वो ऐसी मौजर सेहत चीज़ के बारे में जो ये मवाद के बारे में बातें फैलाए या शाया करें कि ये मवाद ये जो चीज़ है ये खाने का प्रोडक्ट जो है कोई चीज़ है लगाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो सही है और तो और वो गलत बयानी से काम ले और वो लोगों की सेहत के लिए जो है वो मौजर हो, तो ऐसे बयानात और ऐसी राय देने से भी जो है मना किया गया है। ऐसे बयानात और ऐसी राय देने से भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया है जो लोगों में जो है ना उनमें बदअखलाकी पैदा करे, उनके जहनों को गंदा करे या इस तरह की ऐसी चीज़ों की ऐसा मवाद शाया किया जाए या ऐसी चीज़ों की एडवर्टीज़मेंट की जाए, नशर की जाए ऐसी चीज़ें जिससे बच्चों का जो है ना बच्चों का अखलाकी हालत ख़राब हो और बच्चों का अखलाक जो है वो गंदा हो। ऐसे अच्छा फिर उसके बाद ये है कि अगर बहुत से ऐसे मवाद हैं जैसे जो है वो शाया किए जाते हैं और गवर्नमेंट को इस बात की जो है वो इजाज़त दी गई है कि अगर रेडियो टेलीविज़न या सिनेमा इसमें से कोई भी ऐसी मीडियम है जो कि कोई भी नशरियात या ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उन पे रिक्वायरमेंट उनकी जो है ना वो करें फिक्सटिक्शंस फिट करें कि रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को जो है आज़ादी दी गई है कि वो कानून के मुताबिक जो है ना नशरियात पे जो है ना अपना वो है वो रखे रिस्ट्रिक्शन रखे पाबंदी रखे। अच्छा अब मैं एक इस हवाले से ये बात करना चाहती हूँ कि आज़ादी इजहार बयान या आज़ादी इजहार राय जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है उन ममालिक में ख़ास तौर पर वो ममालिक जो ये कहते हैं कि हम जी बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ के अलम बरदार हैं और हम इंसानी हकूक़ को जो है ना अक्सरियत और अकलियत दोनों को जो है दोनों पे वो लागू करते हैं, तो ऐसे ममालिक जहाँ पर
معاف کیجیے گا لیلا بتول صاحبہ، لگتا ہے کچھ وقت میں ہم لوگوں کے پرابلم ہو گئی ہے، اور اس میں اس لحاظ سے وقت میں پرابلم ہو گئی ہے کہ جو موضوع ہم لوگوں نے وہ کیا ہے، اس کو بہت ہی وسیع موضوع ہے، لیکن اس کو واقعی اور سمونا اس کو چند منٹ میں بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن آپ نے بہت ہی اہم نکات کی جانب اشارہ کیا ہے، ایک تو ہر ایک کے حق کے بارے میں کہ آزادی اظہار کا اسے حق ہونا چاہیے، لیکن قانون کے دائرے میں یہ کام ہونا چاہیے، اور اگر ملک کے اصولوں کے مطابق اور معاشرے کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوا تو اپنے مسائل پیش آ سکتے ہیں. اس سلسلے میں حکومتوں نے بھی اس علاقے، خصوصاً حکومتوں نے، بعض نے جہاں پہ جمہوریت ہے خاص قسم کے میں حدود مقرر کیے ہیں، اور جہاں پہ عامریت ہے ان لوگوں کا تو خیر کیا کہنے کہ انہوں نے سرے سے محدود ہی کر کے رکھ دیا. اس محدودیت میں آپ کو اپنی جگہ ڈھونڈنی ہے، آزادی کہیں پہ ہے نہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ ہفتے بھر بھر گفتگو کریں گے اور مختلف پہلوؤں پر اس کی روشنی ڈالیں گے، خصوصاً یہ کہ جو دعوے دار ہیں آزادی اظہار اور آزادی بیان کے، وہ لوگ کہاں پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور کس حد تک دوسروں کو آزادی فراہم کر رہے ہیں. ایک جانب مسلمانوں کے خلاف جو جی چاہے، جس کا جی چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن اگر ان کے اصولوں پر تنقید کرنا آپ نے شروع کی تو فوراً قانون کو سامنے لے آتے ہیں اور اسے منافرت پھیلانے کے برابر قرار دے دیتے ہیں. تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لیلا بتول صاحبہ کا، بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی. جی خرم
جی بالکل. تو آپ وقت ہوئے یہاں پر ایک مختصر وقفہ لے لیں، کیا خیال ہے؟
بالکل
جی، ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
میں نے آپ سے جن چٹنیوں، اچاروں اور مربوں کی بات کی تھی وہ یہاں پر ہے. یہ دیکھیے، یہ بہت آسانی سے آپ کی دسترسی میں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی اور ہاں پیسے بھی چکانے ہوں گے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو پشیمانی بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں کی بنی ہوئی چٹنیاں، اچار اور مربے بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، آگے چلتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کرتے ہیں ماسولے کے بارے میں. ناظرین آپ ان طرح طرح کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا جو ان گلیوں سے آ جا رہے ہیں. یہ لوگ گرمیوں کے زمانے میں ایران کے مختلف علاقوں سے یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جو زیادہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں وہ رات بھی یہیں پر گزارتے ہیں، جس کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ یہاں بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. تو آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. ناظرین یہ ایک اور چیز ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ماسولے میں حاصل کر سکتے ہیں، ماسولے کی بنی ہوئی دستکاری کی چیزیں. یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماسولے کی بڑی بوڑھیوں کی ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ان چیزوں کو سیاحوں کو بیچنے کے لیے تیار کرتی ہیں اور اس سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. ماسولے میں اسی طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہم آگے چلتے ہیں. جب آپ کے آس پاس سے لوگ گزرتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر بچے جو توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں، وہ جب آپ کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو بہت فرحت محسوس ہوتی ہے. یہاں پر مجھے دستکاری کی کچھ اور چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ہم یہ اونی موزے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، لگتا ہے اس لڑکی نے یا کسی اور خاتون نے اسے تیار کیا ہے۔ چلیے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ کتنے کا ہے؟
7,000 کا۔
7,000 تومان، یعنی تقریباً $2 سے کچھ زیادہ۔ یہ سب ہاتھ سے تیار کیا گیا ہے نا؟
جی ہاں۔
آپ نے بنایا، آپ کی دادی نے؟
ہماری دادی نے۔
جی ہاں، دادیاں عام طور پر دستکاری کی صنعت میں زیادہ ماہر ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ اپنی پوتی کو بھی یہ ہنر سکھائیں گی۔ یہاں کی خواتین ٹورسٹوں سے باتیں کرتے وقت بالکل تھکنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ ان سب کو بے حد مہمان نواز اور ملنسار پائیں گے، ویسے ہی جیسے باقی سارے ایرانی ہیں۔ یہاں اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی مشکل درپیش آئے یا کوئی سوال درپیش ہو تو بس ان سے کہہ کے دیکھیے، پھر آپ ان کو بغیر کسی دقت کے اپنی مدد کے لیے آمادہ پائیں گے۔
ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی۔ اس ہفتے ہم لوگ آزادی اظہار، آزادی بیان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں مختلف اخباروں نے جو کارکردگی دکھائی ہے اپنی، یا اس سلسلے میں جو عدم کارکردگی دکھائی ہے، اس حوالے سے خصوصا ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو ہفتے بھر ہمارا ساتھ دیجیے گا، اور اس سلسلے میں آپ لوگ بھی مکمل طور پر آزاد ہیں کہ اظہار رائے کریں ہمارے پروگرام کے بارے میں، وہ ہم لوگ قبول کریں یا نہیں کریں، وہ ہم لوگوں کے آمریت یا جمہوریت پر منحصر ہے۔ چلتے ہیں خرم کے پاس، ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر دیپن جان گھوش۔
بہت شکریہ حسن۔ اور جی، ہمارے ساتھ دیپن جان گھوش یہاں پر موجود ہیں، ایم ایس سی نینو ٹیکنالوجی، میڈیکل نینو ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں، اور ہماری گفتگو ان سے چلے گی آج کے جو لینز استعمال ہوتے ہیں اور نینو ٹیکنالوجی، ان لینز کے سلسلے میں کیا ایڈوانسمنٹ کر رہی ہے، تو اس سلسلے میں ان سے بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ملاقات کرتے ہیں دیپن جان سے۔ کیسے ہیں دیپن جان؟ ٹھیک ٹھاک، ویلکم کرتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ دیپن جان، بہت تبدیلیاں آئی ہیں لینس، آنکھوں کے لینس کی شعبے میں۔ کلر لینس آئے، پھر جو ہے جن کی لوگوں کی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے ان کے لیے لینس آئے، پھر اخبار لیزر ٹیکنالوجی آ گئی۔ تو یہ کیا، یہ تھوڑی سی اس کی کہانی ہمیں سنائیں کہ کس لیے تبدیلیاں آئیں اس میں، اور کس طرح کے لینس ہم استعمال کرتے ہیں آج کل، کس طرح کے ہیں؟ پہلے وہ ہوتے تھے، ان کو پانی میں ہر ایک گھنٹے بعد ڈالنا پڑتا تھا، کچھ ایسی چیزیں تھیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔
تو سب سے پہلے لینس آیا کیونکہ جب آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو ہمیں جو لینس ہے اس کو یا تو لائک باہر سے چینج کرنا پڑتا ہے، یا اوپر سے ہم کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں۔
اچھا،
تو جو کہ آپ کو آنکھوں کی روشنی کو صحیح سے لائک ایڈجسٹ کر پائے۔ تو اس میں لائک بہت طرح کے چینجز آئے لائک جب سے یہ اسٹارٹ ہوئے۔ پہلے جو لینسز آتے تھے وہ ہوتے تھے گلاس کے بنے ہوئے، تو بہت ہی وہ ایک دم کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے۔ جو بھی پہن، آپ سوچیں گلاس کا لینس ہے جو آپ کے آنکھوں کے اوپر لگایا گیا ہو، وہ آپ شاید کچھ ہی گھنٹے پہن سکتے تھے، پھر اس کو دوبارہ آپ کو نکال کے اس کو پھر سے لگانا پڑتا تھا، تو ایسے پرابلمس فیس ہوتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ دیکھا گیا ہے کہ تاکہ اور یوزر فرینڈلی لینس لایا جائے، جو سافٹ لینس ہوتے ہیں، جو پالیمر سے بنے ہوتے ہیں، جو جیل کی طرح ہوتے ہیں، لائک جو آپ آنکھوں کے اوپر لگاؤ، نہ آپ کو اریٹیشن ہوگی، نہ آپ کو کسی طرح کے پرابلمس ہوگی۔ تو یہ جو لینس ہوتے تھے یہ آپ پورا دن یا پھر کچھ دن تک ایک ساتھ پہن سکتے تھے۔ پھر بھی اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو مین پرابلم ہوتا تھا کہ ہمارے آنکھوں میں جو کارنیا ہے، کارنیا میں کوئی بلڈ ویسل نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو ان کے سیلس کو بچائے رکھنے کے لیے وہاں پہ آکسیجن کی سپلائی بہت ضرورت ہے،
ٹھیک ہے،
پر جیسے بلڈ ویسلس نہیں ہے تو خون کے اور سے بلڈ ویسل لائک آکسیجن ہمیں وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو آنکھوں میں جو آکسیجن پہنچتا ہے وہ جو کھلے، کیونکہ آنکھ جو ایئر سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو اس طرح سے آکسیجن ہمارے آنکھوں میں پہنچتا ہے،
یعنی باہر سے،
باہر سے،
خون کے ذریعے نہیں لیکن باہر سے، جو
باہر سے۔ پر اب یہ سوچیں، کانٹیکٹ لینس لگا لیتے جو ہارڈ کانٹیکٹ لینس ہوتے ہیں یا پھر جو پالیمرک بیس کانٹیکٹ لینس ہوتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ جو آکسیجن کا جو ایکسچینج ہوتا ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے۔
ہاں، کیونکہ لینس لگ گیا تو ہوا کیسے اندر جائے گی؟ اب
तो ये ब्रॉथ, तो आँखों का न्यूट्रिशन बंद हो जाता है और कभी कभी ये जो आँखों में जो इचीनेस होता है, फिर ड्राइनेस, रेडनेस, ये सारे इसी के कारण है।
ठीक है,
तो फिर उसके बाद कुछ सालों से और अभी भी जो रिसर्च चल रहा है कि कैसे ऐसे मटेरियल्स यूज किया जाए, चाहे वो कुछ पॉलीमर्स हो या नैनो टेक्नोलॉजी के फिल्म हाइड्रोजेल्स हो, जो पोरस स्ट्रक्चर हो, जिसमें पोर्स हो,
सुराख
हो, सुराख हो जिसमें, जिसके अंदर थ्रू से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो सके, तो आपके आंखों में लेंस भी रहा, आपकी रोशनी भी सही हो गई और आपके आंखों की जो न्यूट्रिशन है, आंखों की जो हेल्थ है, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई।
ठीक, अच्छा दीपन जान, ये जो रोशनी आप कह रहे हैं, ये कहने का मतलब आपका ये कि जो रोशनी बाहर से हमारी आंखें ले रही हैं, यानी जो बाहर से रोशनी जो हमारी आंखों में जा रही है, उसका कुछ मसला हो जाता है, इसलिए हम लोग लेंस इस्तेमाल करते हैं?
नहीं, उसका तो मसला नहीं है, पर आंखों में जो हमारा नॉर्मल लेंस है, जो हमारा लाइक जो इननेट लेंस है, जो पहले से है,
कुदरती तौर पे लगा हुआ है,
ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लाइट को रिसीव करते हैं और उसको रेटिना के ऊपर फोकस करते हैं,
जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसको फोकस करेगा।
तो अगर इस लेंस में जब प्रॉब्लम होता है कि चाहे लेंस का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो या लेंस की पावर, जिसे हम कहते हैं पावर डिफेक्ट,
काम करने की वो छोड़,
जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अगर ये सब जो पैरामीटर चेंज होते हैं, तो जो वो जो लाइट है, जो रेज है, जो भी लाइट रेज है, वो रेटिना तक सही से नहीं पहुंच पाता, तो हमें ब्लर्ड इमेज दिखाई देता है। जैसे पता है कि एज के साथ या कभी कभी ऐसे ही लाइक हमें आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जैसे हमें जैसे कहते हैं कि मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम सही से देख नहीं पाते, तो इसलिए एक बाहर से लेंस लगाया जाता है, ताकि जो हमारे जो अंदरूनी लेंस है, उसमें जो प्रॉब्लम है, उसमें जो वो आ रहा है, वो बाहर के लेंस से उसको
सही किया जाए। अच्छा दीपन जान, हमेशा कोई ना कोई मसला रहा है इन लेंसेज के साथ, ऐसा क्यों है?
हाँ, यही बात है कि जैसे आप कोई भी इन्वेंशन देख लो या कोई भी डिस्कवरी देख लो, तो हम कह नहीं सकते कि आज अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो वो बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि हर टाइम के साथ उसे वो चेंज होता रहता है, वो और बेहतर बनता जाता है। तो आंखों के लेंस से भी ऐसा प्रॉब्लम, पहले जो प्रॉब्लम हुआ, मैंने कहा कि लोगों की यूज करने में, कि वो लोग ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पा रहे थे। आप सोचिए, लाइक अगर आपको दिन में लाइक चंद घंटों के बाद लेंस बदलना हो, तो आपके लिए वो आसान नहीं है।
बिल्कुल सही।
फिर देखा गया कि उसको कैसे आप दो दिन से कुछ दिनों तक पहन सके,
ठीक है।
फिर देखा गया कि आंखों की हेल्थ, जो मैंने कहा ऑक्सीजन ट्रांसफर या और कंफर्टेबल बनाने के लिए, फिर और भी प्रॉब्लम्स हुई जब आंखों में, जैसे मैंने कहा, जो आपने कहा कि खुश्क हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देख के दिन ब दिन इसमें डेवलपमेंट होते जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया दीपन जान घोष, हमारे साथ नाजरीन यहाँ पर मौजूद है, गुफ्तगु हमारी चल रही है इनके साथ आई लेंस, आंखों में जो लेंस लगाए जाते हैं, उस सिलसिले में। अब नैनो टेक्नोलॉजी में इसमें क्या किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलेंगे हसन के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, और अभी हम लोग चलेंगे साथ में, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आज़ादी इजहार के बारे में आप लोग कोई भी राय, आप कुछ भी कहना चाहें, आप लोग मुकम्मल आज़ादी है आप लोगों को, और ये आज़ादी सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग दे रहे हैं या कोई और मीडिया दे रहा है या कोई हुकूमत दे रही है, खुसम मगरबी दे रहे हैं, बल्कि ये एक हर एक इंसान का हक है कि वो मुकम्मल तौर से हर एक चीज़ के बारे में सवाल करे, और ये आज़ादी उसको हत्ता खुदा की तरफ से दी गई है, यानी मुसल्लत कोई चीज़ नहीं की गई है, बल्कि आपको मुकम्मल आज़ादी है, उसके बारे में सवाल करें और फिर उसे कबूल करें या कबूल ना करें। चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत ही मज़ेदार सा एक ये पैगाम है। ये जिम सी हाइंस आपने कहा है कि जो आज़ादी इजहार के कवानीन हैं वो आपको गलत चीज़ें कहने से बचा नहीं सकते, और अगर आपने कहा है तो आपको पूरे तौर से उसके जितने भी मुज़र असरात हैं उससे आपको यानी उसको बर्दाश्त करना होगा, और अगर कोई कवानीन लागू हो गए इस सिलसिले में तो आपको फिर झेलने होंगे वो कवानीन। चलते हैं फिर खुर्रम के पास हम लोग, और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, एक मज़ेदार सी खबर आपकी खिदमत में पेश करेंगे।
बहुत शुक्रिया हसन जी। नाज़रीन, दीपन जान घोष हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और MSc नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारी गुफ्तगू चल रही है इनके साथ लेंस, आई लेंस के सिलसिले में, और नैनो टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है। दीपन जान, क्या किस चीज़ के बना होता है लेंस?
लेंस जो मेनली बने होते हैं ये पॉलीमर्स के, पहले जैसे मैंने कहा कि पहले ग्लास के बने होते थे।
अच्छा।
फिर धीरे धीरे जब सॉफ्ट लेंस आए तो वो मोस्टली पॉलीमर्स के बने होते हैं, बायोपॉलीमर्स, जो बॉडी के लिए या आँखों के लिए सेफ हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो मोस्टली वो एक्रेलेट होते हैं, एक्रेलेट पॉलीमर्स, जिसे हम एक्रेलिक लेंस कहते हैं। तो इस पे मोस्टली आज देखा जाए तो दो तरह के लेंस होते हैं।
अच्छा।
एक होता है हार्ड लेंस, एक होता है सॉफ्ट लेंस।
ठीक है।
जो हार्ड लेंस जो होता है वो लाइक रिजिड पॉलीमर्स के होते हैं,
सख्त किस्म के,
सख्त पॉलीमर्स के होते हैं।
अच्छा।
और वो मोस्टली और लाइक ऐसे लाइक फ्लेक्सिबल नहीं होते, लाइक अपने जगह पे वो रहता है। जो सॉफ्ट लेंस होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो आंखों के ऑलमोस्ट पूरे आइरिस को कवर करते हैं, और वो लाइक सॉफ्ट पॉलीमर्स, जो एक्रेलिक पॉलीमर्स मैंने कहा, जो फ्लेक्सिबल, जो जेल के तरह होते हैं।
ठीक है।
तो ये दो मेन लाइक टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं।
ठीक है।
अब दो लेंस के अलग अलग काम है। जैसे सॉफ्ट लेंस जो मोस्टली देखा जाए ये तक बहुत देर तक पहन सकते हैं।
अच्छा।
ठीक है। पर इसमें अगर आपका हार्ड लेंस जो होता है वो मोस्टली रिजिड होता है, आपको लाइक आप कम ही टाइम तक पहन सकते हो, पर लाइक उसमें जो विजन की जो करेक्शन होती है, ये सब जो चीज़ें होती है वो हार्ड लेंस से ज़्यादा बेहतर होता है।
सही। अच्छा, अभी कितनी किस्म के, पूरी तरह कितनी किस्म के हमारे पास लेंस मौजूद हैं, यानी मटेरियल के लिहाज से अगर हम बात करें तो?
मटेरियल के लिहाज से जैसे बात करें तो जैसे मैंने कहा हार्ड और सॉफ्ट लेंस हो गए।
अच्छा, ठीक।
अब और एक तरह के लेंस है जिसे हम कहते हैं कि रिजिड ग्लास परमेबल लेंस, जैसे RGP।
अच्छा,
इसमें जो मैंने कहा कि लाइक गैस परमेबिलिटी, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, लाइक आंखों में ऑक्सीजन
हवा आ जा सकती है,
आ जा सकती,
ठीक है।
तो ये RGP लेंस में होता है जिसमें लाइक रिजिड होता है पर उसमें गैस परमेबल, गैसियस एक्सचेंज हो सकता है।
ठीक है।
तो ये टाइप का एक लेंस हुआ।
सही है।
ये लाइक पॉलीमर बेस्ड हुए।
ठीक।
और अगर आप देखें कि अभी नैनो टेक्नोलॉजी लाइक नैनो साइंस के थ्रू एक लेंस आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक बार बात किया था, हाइड्रोजेल जो होते हैं वो बेसिकली पॉलीमर्स का मिक्सचर्स होता है।
अच्छा।
चाहे वो PVA हो या फिर काइटोसैन हो या
पॉलीमर,
हाँ, या दो तीन पॉलीमर, एक पॉलीमर को मिक्स कर हाइड्रोजेल बनाया जाता
है।
हाइड्रोजेल के नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो मतलब वो पानी का बनाओ, लाइक जिसमें मैक्सिमम परसेंट बोला जाए ऑलमोस्ट 70-80% या उससे भी ज्यादा सिर्फ पानी होता है।
अच्छा।
तो जो भी कोई भी स्ट्रक्चर में जब आप पानी ज्यादा रखते हो तो ये नॉर्मल सी बात है कि उसमें पोरस स्ट्रक्चर होगी, सुराख होगी, पोर्स होगी।
ठीक है।
और ये एकदम जेल के तरह सॉफ्ट होते हैं, जैसे आप कोई भी कॉर्निया लाइक स्ट्रक्चर पे लगाओ तो वो वही शेप ले लेता है।
जबरदस्त।
और जो गैसियस एक्सचेंज होता है तो ये बहुत ही सही होता है, लाइक सॉफ्ट लेंस से भी ज्यादा इसमें होता है।
बहुत शुक्रिया दीपन जान घोष, आपकी गुफ्तगू इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं दीपन जान घोष की, और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है उनके साथ हमारी, के लेंस जो हैं उनकी बहरहाल क्या क्या टाइप्स हैं, और उसके साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी ने हाइड्रोजेल नाम की, जी बिल्कुल, लेंस बनाया। इंशाल्लाह गुफ्तगू बढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी हम चलेंगे हसन के पास।
बहुत शुक्रिया खुर्रम। अपने हमारे एक दोस्त हैं शफकत अहमद साहब कश्मीर से, उन्होंने एक सवाल भेजा है खुर्रम के, आई लेंस बेहतर है या चश्मे बेहतर हैं, तो इसके हवाले से बता दीजिएगा। बहरहाल इनका सवाल है, और हम आप नाजरीन को बताएंगे एक ढाबे के बारे में जो लंदन में खुला है। यह आम ढाबा नहीं है, बल्कि इसमें ख़ास चीज़ ये है कि इन लोगों ने उस जगह पे इस पूरे रेस्टोरेंट को खोला है जहाँ पे बहुत ही यानी बज़ाहिर ये है कि इजाफी जगह थी, और उसमें कोई ख़ास यानी बिल्कुल वेस्ट जैसे कहा जाता है, इजाफी जगह जो ज़्यादातर ये होता है कि जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके किनारे थोड़ी खाली जगह रह जाती है, वहाँ पे खोला गया है ये रेस्टोरेंट। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये रेस्टोरेंट इजाफी चीज़ों से, जो कुछ शहर में इजाफी रह गया है उसके ज़रिए बनाया गया है, यानी इसके सारा फर्नीचर इसका जो है, और खाना जो है वो भी इंतहाई सादा तरीके से बनाया जाएगा। और इसमें ख़ास एक और ख़ास चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा माहौलियात का ख्याल रखने का इंतज़ाम किया गया है, और आप लोग खुद आके वहाँ पर अगर कोई चीज़ आप उगाना चाह रहे हैं खाने पीने के हवाले से या अगर खूबसूरती के लिहाज से, तो आपके आप वहाँ पे वो चीज़ें भी लगा सकते हैं, वो पौधे लगा सकते हैं और ख़ुद आप तआवुन भी कर सकते हैं इस सिलसिले में। जो और चीज़ें मज़ेदार सी इस जगह के बारे में हैं वो ये है कि तमाम इजाफी चीज़ें जो शहर में, जैसा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि यहाँ पर लाई गई और वहाँ के हिसाब से यानी जितनी जगह है उसमें तब्दीली लाई गई, तो ये काम जो किया गया वो ये है कि काम भी यानी नए लोगों के लिए रोज़गार का मौका फराहम हो गया और इसके अलावा वहाँ पर एक ख़ास खूबसूरती अपनी हो गई जो बज़ाहिर ये कि बहुत बदनज़मी है लेकिन अपने बदनज़मी में एक नज़्म वहाँ पर छुपा हुआ है। और जो ख़ास अभी काम ये किया जाएगा कि ये अगर वहाँ पे आइंदा चंद साल में भी मसलन वहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने, वहाँ की बल्दियाँ ने ये काम करना शुरू कर दिया है, कोई बिल्डिंग बनाना चाह तो वहाँ से ये लोग सब चीज़ें एक दिन के अंदर उठा के दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह के रेस्टोरान मेरे ख्याल में हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी मौजूद हैं वसी तादाद में, लेकिन इन लोगों का फ़र्क ये है कि ये लोग माहौलियात का ख्याल रख रहे हैं। हम लोगों के यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाहिद चीज़ जिसका ख्याल नहीं रखा जाता, अलबत्ता मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, यही माहौलियात हैं। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम नसीमे ज़िंदगी। अभी हम लोग टेलीफोन लाइन के ज़रिए चलते हैं इकराम रईसी साहब के पास और देखते हैं कहां से उन्होंने हमें कॉल किया है, हमारे नाज़रीन में से हैं। नंबर आप अपना भेजिए, आपसे भी हम लोग रابطہ करेंगे। इकराम रईसी साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं, मुकम्मल अपना तारुफ़ करवाइए और बताइए कि कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं हमें।
जी, मेरा नाम इकराम रईसी और मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ।
अच्छा, बलूचिस्तान में कहाँ से?
ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर है ना।
अच्छा, और प्रोग्राम हम लोगों का आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देखकर, रोज रोज में देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
इसमें किन चीज़ों की कमी है वो हम लोगों को जरूर बताइए, खुद हम लोग इसमें बहुत खुशी होती है कि हम लोग अपने प्रोग्राम की खामियाँ दूर कर सकें। अगर कोई कमी आपकी नजर में?
प्रोग्राम में सब कुछ है जो हम लोग चाहते हैं,
बहुत
सब कुछ है।
हाँ, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम रईसी साहब, माफ़ कीजिएगा, वक्त हम लोगों का बहुत महदूद है, आपको पता ही होगा कि हम लोग कितना अपने माहिरीन से भी हम लोग बहुत ही मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू करते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने हमसे रब्ता किया, और आप नाज़रीन भी अगर चाहें कि आपकी आवाज़ को हम लोग सुनाएँ तो आप अपना नंबर भेजिए व्हाट्सएप के ज़रिए प्राइवेट मैसेज में और हम लोग फिर आपसे रब्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम रईसी साहब, वापस चलते हैं खुर्रम की तरफ, गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे, वो सवाल भी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जी दीपन जान घोष हमारे साथ मौजूद हैं। दीपन जान, पहले तो सवाल का जवाब दे दें कि एनक लगाना सही है या लेंस लगाना?
इसमें सही गलत का बात हम कह नहीं सकते। अच्छा। जैसे आपने पहले ही कहा कि चाहे वो ग्लासेस हो या फिर लेंस हो, हमारा जो मेन एम है वो है कि विजन को सही करना।
बिल्कुल सही।
जो विजन में जो डिफेक्ट्स होते हैं, आंखों की रोशनी में जो कमी, उसको सही करना, वो हमारा मेन एम है।
सही।
ऐसा नहीं करना है कि ग्लासेस पहनना।
अच्छा।
क्योंकि बाहर होता है कुछ लोग को लाइक उसे एडजस्ट नहीं कर पाते या कंफर्टेबल नहीं होते।
बिल्कुल सही।
तो लेंस जो है, लेंस आप आंखों के ऊपर लगा ले तो आपको बाहर में बाहर कुछ रहता है, आपको बाहर से अलग से स्पेक्स कैरी करना, ये सब प्रॉब्लम नहीं होते।
ठीक है।
फिर और एक इसमें जो बात है, जैसे आपने पहले कहा था कलर लेंसेज जो आ गए, कुछ लोग आज ऐसे यूज करते हैं जो आंखों का कलर चेंज करने के लिए।
बिल्कुल ठीक।
लाइक तो उसमें लाइक विजन करेक्शन ये होते हैं पर लाइक अच्छे
देखने के लिए
या फिर दूसरे चीजों के लिए।
बिल्कुल ठीक।
तो ये आंखों का लेंस का, तो यही जो मेन डिफरेंसेस है, पर दोनों का मेन काम ये है कि लाइक हमें कैसे सही से सही
दिखाई दे। बिल्कुल सही। अच्छा दीपन जान, एक बात, अक्सर लेंस का नाम लिया जाता है हाइब्रिड लेंस, ये क्या होता है?
हाइब्रिड लेंस, जैसे मैंने कहा कि दो जो मेजर टाइप्स के लेंस है, एक हो गया आपका हार्ड लेंस और सॉफ्ट लेंस, और मैंने दोनों के एडवांटेजेस बताए।
ठीक है।
तो अगर आप सोचिए कि अभी जो चल रहा है, एक ऐसे लेंस बनाया गया जो जिसका जो बाहर का जो हिस्सा है,
ठीक है,
वो आपका सॉफ्ट लेंस हो,
ठीक,
ताकि आप पूरे आईडीज को कवर करे और वो जेल के तरह आंखों में आपकी कोई लाइक इरिटेशन ऐसी चीज़ें ना हो
वगैरह ना हो, बिल्कुल ठीक।
पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आँखों में ऑक्सीजन की आना जाना लाइक जो एक्सीजन वो भी सही होना चाहिए,
बिल्कुल ठीक है।
तो वो जो बीच में जो मैंने कहा कि जो रिजिड गैस परमेबल लेंस है जो हार्ड लेंस की तरह है, तो आपका जो लेंस है पूरा सर्कुलर लेंस उसका जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे एक लाइक तस्वीर में वो हम देख सकते हैं
जी।
जो बीच का जो हिस्सा है वो हार्ड लेंस है,
ठीक
है। तो आपने लेंस लगा लिया, जो बाहर का हिस्सा हो आपका वो सॉफ्ट लेंस हो और बीच का हिस्सा जो हार्ड लेंस हो,
बिल्कुल जैसे
जो ये जैसे कहा कि एक हार्ड लेंस और बाहर का जो हिस्सा है वो सॉफ्ट लेंस। तो आपको जो लास्ट का पिक्चर उसमें दो लेयर दिख रहा है,
बिल्कुल
जो बीच का जो थोड़ा लाइक डार्कर ब्लू रीजन है वो हार्ड लेंस है। अच्छा। जो सिर्फ आंखों के प्यूपिल के ऊपर होगा जहाँ पे आपको गैसियस एक्सचेंज होगा और आपके ऑक्सीजन भी जाएगा, और जो बाहर का जो रीजन है वो जेल के तरह होगा तो आपके आंखों में कोई इरिटेशन ना हो। तो लाइक दोनों का ही एडवांटेज लेके एक लेंस बनाना, तो ये हाइब्रिड लेंस है।
ठीक, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसर सा बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, के नैनो टेक्नोलॉजी इस उसमें क्या कर रही है लेंस की?
नैनो टेक्नोलॉजी लेंस का जो मटेरियल है उसको बेहतर बनाने में मदद कर रही है।
सही, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपंजन घोष, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू रही हमारी, और उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन ने भी इस्तफादा किया होगा। और अगर कोई आपका सवाल हो इस सिलसिले में ज़रूर हमारे से हमें भेजिएगा ताकि हम अगले प्रोग्रामों में दीपंजन घोष से उनका जवाब ले सकें। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ लाए।
मैं भी शुक्रिया, हाजिर होंगे। ब्रेक लेना था या नहीं? अच्छा, आपको हम बताते चलें कि 3939 ये हमारे फेसबुक पेज के लाइक्स हैं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां तक आपने हमारे साथ दिया। 3939 हैं सिर्फ, 51 और अगर आप लोगों ने लाइक्स कर दिए तो 4000 हो जाएंगे, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहां तक आपने साथ दिया, और इंशाल्लाह आप लोग 4000 तक, 4000 हकीकी दोस्त जो हैं वो हम लोग बनाने में आप मदद करेंगे। एक काम आप लोग ये ज़रूर करिएगा कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पेज पर उसको शेयर ज़रूर करिएगा। और एक और चीज़ हम आपको बताते चलें अपने मेहमानों के बारे में, खुर्रम भाई के, एक तो हम लोग अपने मेहमानों के बारे में ये बता सकते हैं कि डॉक्टर हाजी बहादुर हम लोगों के साथ होंगे कल, और वो गुफ्तगू करेंगे नफ्सियात, यानी जो होती हैं हम लोगों की, खाने के मुख्तलिफ किस्म के खाने भी हम लोग खाते हैं तो एक दूसरे पर क्या असरात होते हैं, इसके हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे। और प्रोफेसर सुल्तान जो हैं वो गुफ्तगू करेंगे हम लोगों से आज़ादी और आज़ादी बयान के बारे में, इस्लाम और मग़रिब के नज़रियात में फ़र्क। तो ये बहुत अहम मौजू है, खुसूसन हम लोगों के पूरा जो बरसग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेकर ईरान तक, इसमें आज़ादी बयान का मेयार कुछ और है, और फिर आप मग़रिब में चले जाएं तो मेयार कुछ और हो जाता है। तो इसमें फ़र्क क्या है ये जानना इंतहाई ज़रूरी है हम सब के लिए। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ तआवुन किया। अगर आप हमसे राबता करना चाहें प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद, इसी नंबर्स पर आप मैसेज भेज सकते हैं हम लोगों के लिए। तकरीबन दिन भर हम लोग ऑनलाइन रहते हैं और आपके मैसेजेस पर हम लोग ख़ास तवज्जो देते हैं। तस्वीरें अगर आप अपने इलाकों की भेजें तो हम लोग यहाँ पर वादा करते हैं कि वो भी हम लोग ज़रूर दिखाएंगे। अच्छी तस्वीर होनी चाहिए, आपके अपने कैमरे या मोबाइल से ली गई तस्वीर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वक्त आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों का ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है कि आज का भी प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।